अत्यंत मतलब रिवाइज भी हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएंगी। जब हम सात तत्वों को पर श्रद्धा करते हैं, वे जैसे हैं वैसा का वैसा हम उनको वाली दो, ये वाली नहीं। अच्छा, करें मोक्ष मार्ग में, क्योंकि जब अपन सात तत्वों की चर्चा करें तब जीव को अपन डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जीव की तीन स्टेजेस हैं या तीन तरह के जीव हैं। देखना, ऐसा दोनों बातें हैं, तीन तरह के जीव नहीं है। जीव तो दो ही तरह के हैं, एक संसारी है और एक मुक्त है ना। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि जीव की कितनी स्टेजेस हैं। मैं तो कल ऐसा बता गया था शायद कि यहाँ मोक्ष मार्ग में तीन तरह के जीव हैं, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग में तीन तरह की अवस्थाएं हैं जीव की। जीव के भेद तो मुक्त और संसारी हैं, और फिर संसारी में भी त्रस्त और स्थावर हैं, वहां सकल निकल हैं। लेकिन हम स्टेजेस बता रहे हैं। जब हम जीव तत्व का वर्णन करेंगे तो हम उसकी स्टेजेस बताएंगे, क्योंकि वो स्टेजेस उसकी भावना के ऊपर डिपेंड करती है। और तत्व मतलब भाववाची शब्द है, हमारे भीतर जीवत्व है, जीव बना है। इसलिए जब तत्व को हम डिफाइन कर रहे हैं तब तो हम क्या कहेंगे कि जीव तीन स्टेजेस में हो। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तो जो शरीर को ही अपना मानता है, आत्मा मानता है, वो बहिरात्मा। वो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा जो है वो जघन, मध्यम और उत्कृष्ट या उत्तम, तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम अंतरात्मा किसको कहेंगे?
छोड़ देंगे आत्मबलि।
और सबसे बड़ी पहली चीज का द्विविध संग है ना, एकदम याद करो, द्विविध संग विन, दो प्रकार के परिग्रह से रहित हैं और शुद्ध उपयोगी हैं, मुनि हैं, अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, निज ध्यानी। एक लाइन में जो है अपने सारी बात कह दी। दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, शुद्ध उपयोगी हैं और अपने आत्मा का ध्यान करने वाले ऐसे मुनि महाराज जी कौन है? उत्तम अंतर आत्मा है। और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ देश प्रति पेश व्रत का पालन करते हैं, घर में रहते हैं, वे मध्यम अंतरात्मा हैं। और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा तो रखते हैं पर व्रत नियम संयम कोई भी नहीं है, तो जघन। और अगर शॉर्ट में करना हो तो महाव्रति तो है उत्तम, देशव्रति है मध्यम और अविरति है जघन। ऐसा कर लो। हाँ, गुण स्थान वाइज भी करेंगे अपन। जो छठे सातवें गुण स्थान में है वो है उत्तम। एक्चुअली इनने क्या किया है इंग्लिश वाले में,
नहीं
हिंदी वाले में, उनने क्या करा है कि सातवें गुण स्थान में जो है उनको तो कह दिया उत्तम, और जो नीचे गिर गए छठे में उनको कह रहे मध्यम। ये ठीक नहीं है। एक्चुअली छठे सातवें में जो है वो है उत्तम, और पांचवें तक जो है पांचवें में जो है वो है मध्यम, और चौथे में जो है वो जघन। ऐसा है, छठे सातवें में है वो उत्तम, पांचवें में है मध्यम और चौथे में है वो जघन। तो चौथे में कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रत नहीं है। और पांचवें में कौन है? सम्यक दर्शन भी है और थोड़े से व्रत भी है। और छठे सातवें में कौन है? सम्यक दर्शन भी है और पूरे व्रत है, महाव्रत है। बस इतना ही तो है इसमें। और परमात्मा तो दो हैं, एक शरीर सहित हैं, एक शरीर रहित हैं। ये अपनी स्टेजेस हैं आत्मा की। उपयोग कितने होते हैं? उपयोग तीन होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ किसे कहेंगे? विषय कषाय में लगा हुआ मन अशुभ है, और धर्म ध्यान में लगा हुआ शुभ है, और राग द्वेष से रहित है वो शुद्ध है। ये हो गया। ये इसमें जरूरी है इतनी चीज जानना बार बार। बाकी तो अच्छा, और हमें इनमें से क्या करना चाहिए? हमें बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। फिर जो सम्यक दर्शन है, और फिर आश्रव वगैरह तो ठीक है, कर्मों के आने का नाम आश्रव है, कर्मों का आना रुक जाने का नाम संवर है, कर्मों का ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट होना निद्रा है, कर्मों का पूरी तरह से समाप्त हो जाना मोक्ष है, ये तो सारे हो गए। जीव अजीव आश्रव, अजीब को अपन ने नहीं कहा, जो चेतना से रहित है वो अजीब है, उसमें से पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल है, तो पुद्गल तो रूप रस गंध और स्पर्श वाला है, और जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता वो धर्म द्रव्य है, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता वो अधर्म द्रव्य है, जो सभी द्रव्यों को जगह देता है वो काल आकाश है, और जो परिवर्तन को बताता है वो काल द्रव्य है। वो दो प्रकार का है, निरंतर होने वाले परिवर्तन को बताने वाला निश्चय काल, और घड़ी घंटा दिन रात इत्यादि को बताने वाला व्यवहार काल, इस तरह से ही है। तो सब हो गए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। अब कहते हैं और सम्यक दर्शन की दूसरी परिभाषा क्या है? सात तत्वों का श्रद्धांत तो है ही, और दूसरी परिभाषा कौन बता रहा जल्दी से? और क्या बताया था? व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहेंगे उसको? ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी, और फिर उसके बाद हाँ देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखना भी सम्यक दर्शन है। और कैसे कैसे श्रद्धा रखना? आठ अंगों से रहित होकर के, 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से युक्त होकर के जो श्रद्धा रखी जाती वो भी सम्यक दर्शन कहलाएगा। क्या हुआ, क्या कहलाएगा? सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा किस प्रकार से? 8 अंगों से युक्त होकर के, 25 दोषों से रहित होकर के, उसको कहेंगे सम्यक दर्शन। देव कौन है? और एक शब्द में, एक शब्द में क्या कहेंगे? गुरु कौन है? और शास्त्र कौन सा है? दया, जिसमें दया का उपदेश दिया है, दया युद्ध। देखो बार बार रिवाइज करना चाहिए इसका मतलब, तभी याद रहेगा। अच्छा, अब 8 अंग पढ़ना है अपने को, 8 सब। अब कितने 25 दोष कौन कौन से हैं तो पहले गिन लो, 8 अंग तो छोड़ दो, 8 अंग के स्वरूप पढ़ेंगे अपन। 8 पहले तो 8 मत, फिर उसके बाद 8 संका आदि 8 दोष कितने हो गए? 16, 3 मूर्ता 19, और 6 अनायतन हो गए 25। अब जो है इनका क्रम क्रम से वर्णन करते हैं। वर्णन कैसा करेंगे? जिन वच में शंका न धार, ये अपन ने पढ़ लिया था क्या? अच्छा, तो पूछते हैं फिर, निशंकित के मायने? नहीं, ठीक ठीक बोलो। जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करना, और निकांक्षित मतलब संसार के सुखों की इच्छा नहीं रखना है, वांछा। और निर्विचिकित्सा मायने? अन्यों के शरीर को देखकर घृणा नहीं करना। और अमूल दृष्टि मतलब सही और गलत की पहचान होना, तत्व और अतत्व की पहचान होना, सही गलत क्या है इसकी पहचान तो होना चाहिए, इतना विवेक तो होना चाहिए। और उपगुहन मतलब
अपने गुणों को
ढकना, हाँ, दूसरे के दोष छिपा लेना और अपने गुण भी छिपा लेना, और निज धर्म बढ़ाते, और अपने गुणों को, अपने धर्म को बढ़ाना, अपने गुणों को बढ़ाना ऐसा भी ले सकते हैं। और फिर स्थितिकरण मतलब दूसरे को भी और अन्य को भी, निज पर को है। और वात्सल्य के मायने क्या? जिस तरह इधर
गाय अपने बच्चे को देती है उसको
जिस तरह का निस्वार्थ प्रेम गाय और बछड़े का होता है वैसा अपने साधर्म से रखना चाहिए ऐसा। और फिर प्रभावना के मायने क्या है बताओ, कौन बताएगा प्रभावना के मायने क्या? नहीं मालूम? नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप तो पहले से पढ़ के आए, शादी के पहले आपने पढ़ लिया था। नहीं आगरा में पढ़ के आए थे आप, यहाँ जोड़ी अभी जिसमें नया नया क्या कहेंगे
धर्म की
प्रभावना मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन आपने अभी पढ़ के आए उसको क्या कहेंगे? अपने धर्म की प्रशंसा करना, अपने धर्म को बढ़ाना है, जहां भी बैठे तो उसका महात्म्य, जिन शासन महात्म्य प्रभाव सात प्रभावना जिनेंद्र भगवान के महात्म्य को बताना सब दूर। कहे कैसे? कहते अज्ञानात् अज्ञान कोई अज्ञानी है तो उसे ज्ञान दे करके अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपनी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से दूसरे की श्रद्धा बढ़ाओ, अपने ज्ञान से दूसरे का बढ़ाओ, अपने आचरण से दूसरे का बढ़ाओ और उसे सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ाओ। ये जो है इससे मोक्ष मार्ग की प्रभावना होगी। एक्चुअली प्रभावना का अर्थ अपन लोग क्या समझते? प्रोग्राम। इसलिए कह रहा हूं हाँ, प्रभावना के मायने क्या? एक तो बढ़िया सब बहुत प्रभावना भाई, बहुत प्रभावना भाई मतलब एक इमेज क्या है अंदर में बताइए।
इतने लोग आए
देखना आप, एक एक जनरल क्या है? अगर कोई से कहो, कोई भी कहते हम आए थे महाराज हैं, बहुत प्रभावना हो रही, प्रभावना हो रही मतलब बहुत भीड़ जुड़ रही, देखना ऐसा जनरली आता है। नहीं, प्रभावना मतलब प्रभावना हो रही कि हमारे यहाँ पर जैन धर्म का महात्म लोग जान रहे हैं कि जैन धर्म सच्चा है, ये होना चाहिए प्रभावना मतलब हमारे
धर्म से जुड़ रहे हैं ज्यादा लोग ऐसा
ये। पर कॉन्सेप्ट भीतर तो यही है ना, कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि कितने लोग धर्म के मार्ग पर गए वो कहलाएगी। अगर एक व्यक्ति भी धर्म के मार्ग पर लग गया तो वो प्रभावना कहलाएगी। ये मैंने प्रभावना का सही अर्थ अपन को ये करना चाहिए, वो बाह्य प्रभावना है और अंतरंग प्रभावना, ये ऐसा कर लो दोनों।
आज महाराज निकले हुए उसमें एक ट्रक ड्राइवर सरदार ही था, मैंने देखा उसको वो अंदर बैठे हुए हाथ जोड़ कर प्रणाम कर रहा था, तो वो भी एक तरीके से छोटा सा
वो उसको लगता है कि देखो इतने उसमें ठंड में भी जो है वैसे ही रहते, तो कई लोग देखते हैं ये भी। इससे हमारी आचरण से दूसरे को धर्म की प्रभावना हो रही, हमारे ज्ञान से जब हम बोलेंगे वहाँ और लोगों के बीच, तो भाई इनको जो है गीता भवन में गए थे इंदौर में, तो वो जो उनके वहाँ के जो महंत थे वो तो कहने लगे कि भाई गीता हमने पढ़ी, रामायण हमने पढ़ी, लेकिन हमने ऐसी नहीं पढ़ी, आपके महाराज तो हम सोच रहे थे जैन ही है तो वे क्या पढ़ती होंगी गीता, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक वो इस चीज का साल भर हो गया लेकिन तुम्हारी मम्मी भी रुलाती होगी तो प्रभावना हो गई जिन धर्म की जैसे बने। दूसरे शब्दों में कह सकते कि जिन धर्म की जैसे बने, माने ज्ञान दर्शन आचरण से जैसे बने वैसे उसका प्रचार प्रसार या उसका बढ़ाना, ये हो गया। ये बहुत आवश्यक है, इन आठों को जीवन में लाना आना चाहिए। सच्चाई के प्रति मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं अपनी भाषा में, सच्चाई के प्रति संदेह नहीं होना, सच्चे आदमी पर संदेह नहीं होना, सच्चाई के अलावा किसी चीज को नहीं चाहना, सच्चे व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, क्या सच्चा है क्या झूठा है इसका विवेक रखना, सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर कोई दोष करे तो उसके दोष नहीं देखना, सच्चाई पर चलते चलते फिसल जाए गिर जाए तो उसे उठा लेना संभाल लेना, और जो सच्चाई पर चल रहा है उसको हृदय से लगाना, और जहाँ बैठो सच्चाई की बात करना, सच्चाई की प्रशंसा करना। देखिएगा बहुत मैंने सामान्य अगर उसमें अपन देखें इनको ये टर्मलाजी नहीं दें और ऐसा भी देखें तो ये आतंक तो अपने लिए बहुत मैंने अपने जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अपन कहाँ सच्चाई की प्रशंसा कर पाते हैं, सच्चाई पे बहुत जल्दी चलने इस तरह। अब जो है आठ प्रकार के मत कौन से हैं ये भी अपन ने वैसे एक हमने जनरल बता तो दिया था, पर इस परिभाषा के अनुसार आज अपन ने रिवाइज करने से पहले मन वचन का नहीं संभालना। जी त्रिभुवन में जीव अनंत नहीं, तीन भुवन में साध वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप स्वीकार नमः अभी तो रिवाइज कर रहे थे, अब शुरू करते हैं। पिता भूप और मातुल नपजू होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। तब को मद न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। इस तरह से ये कह दिया, क्या कह दिया कि पिता अगर भूप अर्थात राजा है तो उसका अहंकार नहीं कर लेना, मेरा पिता तो राजा है या राजा की यहाँ पर मेरे पिता की अप्रोच है इस तरह, या कि मेरी माँ जो है मामा इत्यादि मेरे माँ का परिवार है उसको बोलते जाति, और पिता के वंश को बोलते कुल, तो कुल और जाति का अभिमान नहीं करना। मदन रूप को, और अगर अपना रूप सुंदर मिल गया तो उसका भी अहंकार नहीं करना, अगर अपने को थोड़ा सा अच्छा ज्ञान मिल गया तो ज्ञान का भी नहीं करना, धन और बल का भी नहीं करना, पैसा मिल गया या शक्ति मिल गई अपने को बलिष्ठ शरीर तो उसका भी नहीं करना, कोई तपस्या वपस्या कर ली उपास कर लिया तो अब सब लोग हमको प्रशंसा करें हमारी, ऐसा नहीं, करेंगे तो करेंगे नहीं करें तो नहीं, हमने तो तपस्या करी, तो अपने तप का अहंकार नहीं करना और अपनी प्रभुता का कि मेरी अपनी प्रतिष्ठा कितनी है, मुझे कितने लोग मानते हैं, कितना प्रभाव है मेरा, इस तरह का अहंकार नहीं आना चाहिए। वो जो व्यक्ति ये अहंकार नहीं करेगा वो ही अपने आप को ठीक ठीक जान पाएगा, और जो अपने आप को ठीक जानता नहीं वो अहंकार करता है, सीधी बात। एक्चुअली अहंकार करने के क्षणों में हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं, जब हम ज्ञान का अहंकार करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा तो केवल ज्ञान स्वभाव है, इस छोटे मोटे ज्ञान का क्या अहंकार करना। जब हम अपने बल का घमंड करते हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं अरे आत्मा में तो अनंत शक्ति अनंत बल है, फिर हम इस छोटे से कुल लेकर के संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसा अगर ध्यान आ जाए, मेरा कुल तो तीर्थंकरों की परंपरा है, मेरी तो मेरे माँ और पिता तो जो है मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, तीर्थंकरों का उत्तराधिकारी, ये छोटे मोटे कुल से और जाति से क्या ध्यान दें। इस तरह अगर हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं इसलिए अहंकार करते हैं, अगर हम अपनी वास्तविकता मालूम हो तो अहंकार नहीं करेंगे, तो वही कह रहे हैं कि सो निज जाने, जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता वही अपने आत्मा को पहचान सकता, अहंकार करने वाला व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं पहचानता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति, इसमें लिखा है यो यस ना जानाती सतस्य निंदाम करोति, जो जिसको नहीं जानता वो उसकी निंदा करता है, जब भी निंदा करने का भाव आ जाए तो समझना कि आप उसको ठीक जानते नहीं, या आपकी कोई निंदा करने लगे तो समझना कि अज्ञानी है जानता नहीं, मुझे जानता होता तो मेरी निंदा नहीं कर सकता।
करने के बाद सेलिब्रेशंस करते हैं उसको किस तरीके से लेना चाहिए,
उसको यही कि तपस्या का है, ये तपस्या का प्रभाव मुझे यही मिलने लगा, अगर मैं ठीक ठीक करूं तो इससे तो मोक्ष हो जाएगा, ये तो छोटा मोटा सस्ते में नहीं मानूंगा मैं, आपने जय जयकार कर दिए इतने से नहीं, मुझे जो आत्म शांति मिली है वो मेरी तपस्या का सही फल है, ये इन सब लोगों ने मुझे नहीं मेरे तप को महत्व दिया है, ज्ञान का सम्मान हो गए तो मेरा नहीं है, मेरे ज्ञान का है, वो ज्ञान तो भगवान का है, जिनवाणी से आया उस ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं आप, मेरी प्रशंसा थोड़ी, इस तरह उस अर्थ में लेना, नहीं तो कल के दिन अगर उस तपस्या का मैंने अप्रिशिएशन नहीं हुआ तो दुखी होंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि इसका मतलब है कि आप सम्मान चाहते थे, अगर सम्मान नहीं मिलने पर दुख हो रहा है तो इसका मतलब सम्मान तो चाह रहे थे, आपको अहंकार था इस बात, ऐसा नहीं। कई लोग होते हैं बहुत पैसे वाले होते हैं, फिर इसके बाद भी उनके भीतर अपन कह देना भैया बहुत पैसा तो बहुत है लेकिन बिल्कुल भी अभिमान नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पैसे वाले हैं, सामान्य आदमी से बात कर लेते तो देखो इस चीज का कितना इंप्रेशन पड़ रहा, पैसा होने के बाद भी अहंकार नहीं, इसी तरह जो भी चीज है उसका अहंकार नहीं, तब फैलाएगी। मैंने हम हमारे व्यवहार में फर्क नहीं आना चाहिए, अपनी चाल ढाल में फर्क आता है वो अलग दिख जाता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी किसी के पास एक्स्ट्रा हो उसके सब चेंज आ जाता है, अपने आप दिखने लगता है। भले मुंह से नहीं कहे उसकी चाल ढाल में सब परिवर्तन आ जाता है कि मेरे पास तो ये चीज एक्स्ट्रा, समथिंग इज एक्स्ट्रा, ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगे कि हमारे पास ये आ ही जाता, बहुत फर्क पड़ता है उसमें उससे बचना चाहिए। ये इतना पूरा हो गया, फिर उसके बाद कहते हैं आप इसमें एक चीज और है, मद धारे तो यही दोष वसु संकेत कोमल ठाने, इन्होंने जो है ये आठों मदों को इन्होंने दोष कह दिया है। एक्चुअली अगर अपन थोड़ा सा जो है आगे शायद ये एक्चुअली जो आठ दोष हैं वो शंका इत्यादि आठ दोष आएंगे, इन्हें लिखा तो उसमें यही है कि शंका इत्यादि, निशंकित की जगह पर शंका कर ली, निकांक्ष की जगह पर कांक्षा कर ली, निर्विचिकित्सा की जगह पर विचिकित्सा घृणा कर ली, ये सब आएंगे दोष। तो ये आठ मद हैं और आठ दोष, इनको कंफ्यूज नहीं करना कि ये आठ मद ही आठ दोष हैं। वैसे तो ये आठ दोष तो हैं ही, पर और भी आठ दोष जब तो 25 होंगे, आठ मद आठ दोष 16 और तीन मूर्ता और छह अनायतन, अगर हम मद को ही दोष मान लेंगे तो फिर और फिर तो कम हो जाएगी संख्या, इसलिए तो यहाँ ये हो गया। फिर अब कहते हैं कि छह अनायतन बताओ कौन कौन से छह अनायतन हैं, आयतन का मतलब और अनायतन का मतलब क्या है,
प्लेस ऑफ वर्शिप।
हाँ, प्लेस ऑफ वर्शिप, धर्म के स्थल को आयतन बोलते हैं, सच्चे धर्म के स्थल को आयतन बोलते हैं। अब सच्चे धर्म का स्थल मंदिर भी है, सच्चे धर्म का स्थल गुरु भी है, सच्चे धर्म का स्थल शास्त्र भी है, तो ये तीनों ही हो गए आयतन और इनके फॉलोअर। जो सच्चे धर्म देव गुरु देव को मानते हैं वो भी आयतन हो गए, क्योंकि उनके माध्यम से भी हमको शिक्षा मिलेगी सच्ची सच्चे धर्म की, क्योंकि धर्म कोई अलग से रहने वाली चीज थोड़ी है, धर्मात्मा के भीतर रहती है, इसलिए धर्मात्मा भी, धर्म और धर्मात्मा दोनों, तो देव भी और देव को मानने वाले दोनों ही आयतन हो गए, गुरु और गुरु को मानने वाले वो भी आयतन हो गए, और इसी तरह से शास्त्र और शास्त्र को पढ़ने या मानने वाले वो भी आयतन हो गए। अब देखिएगा कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है वो भी आयतन है, कितनी बड़ी चीज हो गई। अगर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखते तो हम भी आयतन है, हमारे माध्यम से दूसरे का धर्म ध्यान हो सकता है और हमारे माध्यम से दूसरा कषाय भी कर सकता, तब हमारी जिम्मेदारी हो जाती कि हम अपने माध्यम से दूसरे का धर्म ध्यान करवाएं, क्योंकि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने वाले हैं, हम उसको राग द्वेष का कारण नहीं बने। ये बहुत आसान तो नहीं है, पर मैंने इतनी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आयतन भगवान का तो आयतन है ही जिनालय, लेकिन जिनालय में जाने वाला भी आयतन, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा है वो भी हमारे लिए प्रशंसनीय है, वो भी हमें पूज्य है। मैंने एक कहीं पर लिया है कि मैं तो जिन आंखों में आचार्य को जो प्रणाम कर रहे हैं जो लोग, तो मैं उन आंखों में जो आचार्य हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, उन आंखों को प्रणाम कर रहा हूँ जिसमें उनकी छवि है। ये अप्रोच क्या है, ये अप्रोच वही है कि उधर तो है वो, लेकिन जिसके जीवन में वो आ गए हैं वो भी प्रणम्य है, वो भी हमारे लिए आयतन है, ये मैंने अपने धर्म के बढ़ाने में मदद करने वाला है।
ऐसे थोड़ा सा इसमें ये है कि जैसे पूजा या भगवान की भक्ति के लिए जाता है तो हर व्यक्ति के प्रति तो नहीं होगा जो सम्यक दृष्टि है या जिसको सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि जाने वाले तो
जी कैसे पता करोगे कि किसकी सच्ची है किसकी झूठी है, जो जा रहा है वो सब कोई ना कोई उसके भीतर तो होगा, तब तो वो गया है। होता अक्सर ये है कि जिसे हम पसंद करते हैं वो अगर जाता है तो ठीक है, और नहीं पसंद करते हैं तो फिर उसके प्रति वैसा भाव नहीं आता, ये होता ही है जनरली जो है इसमें अपना कहीं ना कहीं हाँ मैंने लुक जो है वो अपना फर्क तो पड़ता, पर है तो सभी जीव हैं, जो भी आए हैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में वे सब आयतन है। अब ये बात अलग है कि गुणीशु प्रमोदम, अब ये क्या डर कर लो आप कि भैया इनकी श्रद्धा बहुत है, इनकी थोड़ी कभी कभी आते हैं या ये लाभ ही नहीं उठाते हैं, आते तो हैं लेकिन लाभ नहीं उठाते, और कोई व्यक्ति आकर के लाभ उठाए तो उसके प्रति अधिक हो जाएगा, वो तो रहेगा। योनिषु प्रमोदम का क्या, सत्वेषु मैत्रीम, ये चीज अपने अंदर क्लियर होनी चाहिए, इससे राग द्वेष कम होता है, नहीं तो बहुत राग द्वेष होता। प्राणी मात्र से मैत्री है ये सामान्य बात है। मुझे लोगों ने कहा था कि कई लोगों के प्रति आपका बहुत अधिक लगाव होता, एक बहुत सामान्य सी चीज, बहुत लगाव होता, कई लोगों को आप सिर्फ ऐसे ही आशीर्वाद दे के टाल देते हैं, तो ये क्या चीज है? क्लियर क्लियर करने के लिए, कोई राग द्वेष से नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सहज प्रक्रिया है। आचार्य श्री के संघ में भी जो उनकी जितनी आज्ञा मानेगा उसके प्रति उनका ध्यान उतना अधिक रहेगा, बाकी लोगों को ठीक आप सब शिष्य हो आशीर्वाद का उनकी तरफ देख करके भी बात नहीं करेंगे, और इतने 50-100 लोगों में से किसी एक की तरफ देख के बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समथिंग इज एक्स्ट्रा। गुणीशु प्रमोदम, ये मेरी बात को जो कहते हैं ठीक सुनता है और उसको ठीक ग्रहण कर लेता तो उसके प्रति एक सहज भाव होता है, हाँ, वो जो है गुणीशु प्रमोदम, इसमें गुण अधिक है, उन गुणों के प्रति अनुराग है, उस व्यक्ति से कौन सा स्वार्थ साधने वाला। मान लो हम आपको प्राइवेट देंगे भी तो हमें आपसे क्या मिलने वाला, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा कोई संपत्ति उम्पत्ति दे रहे हैं या हमारा कोई काम सटा रहे हैं, क्या होने वाला, हमें उससे क्या मिलने वाला। वहां ये दृष्टिकोण पर जो गुणवान है उसके प्रति अपने आप ही सहज हो जाता, उसमें कोई करना नहीं पड़ता, और जब करना करते हैं तो अलग दिख जाता राग द्वेष। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति भी अगर देव गुरु शास्त्र के दर्शन करने गया है तो वो आयतन, अब उसमें ये बात अलग है कि अब उस मंदिर में भी तो इसी तरह श्रेणी, अब मंदिर भव्य मंदिर बना हो तो उसको देख करके अलग लगता है, और कहीं छोटे से बना हो, हाँ ठीक, कोई कोई भगवान के पास बैठने से बहुत अच्छा लगता, और कोई कोई मूर्ति के सामने हम उस दुख की आगे बढ़ गए, क्या है ये? किसी वेदी पर पूजा करते हैं तो उसी वेदी पर क्यों, उससे लगाओ क्यों, ये तो सहज रहेगा। आप 100 आचार्यों के नाम गिना दो, मगर जब हमारे आचार्य को नाम आए तो अपने आप हो जाएगा। वैसे सबके लिए आप आचार्य महाराज का हो तो अपने आप एकदम जो है, जब जय जयकार होती कुमकुम स्वामी की जय हो, ज्ञान सागर जी महाराज की, हाँ ठीक, आचार्य विद्यासागर जी, अपने आप ऐसा सुन हो, ये करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारा उनसे फोर फादर की चर्चा करो जिनको देखा नहीं तो क्या इंप्रेशन बनेगा, और फादर की चर्चा करे कोई आपके तो एक इंप्रेशन, हमारे पिता और पिता के पिता, हाँ ठीक, दादा थे लेकिन दादा को देखा ही नहीं, डायरेक्ट जो आज देखो महावीर स्वामी की जय फट से, ऋषभ देव की थोड़ा सोचना पड़ता, और अजितनाथ भगवान की तो फिर तो ठीक है, श्यांसनाथ भगवान की कोई नहीं पूछता, श्यांसनाथ भगवान, निर्मलनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान ज्यादा होगा, अल्लाह बुल्ला हो रहा तो शांतिनाथ भगवान, कोई भी पत्ती पत्ती आ गई तो पास में इतवार कर लो। ये जो है ये इसी तरह आयतन में रहेगा, सभी में रहेगा, स्क्रिप्ट भी है, स्क्रिप्ट में भी जो किताब आपको ज्यादा समझ में आती होगी उस किताब के प्रति अनुराग रहेगा, और जिस किताब से बहुत कठिन है प्रणाम दूर से, ऐसा ही इसमें है। तो ये छवन आयतन है, मेरा ध्यान इस तरफ गया कि हम देवगुरु शास्त्र को तो आयतन मानते हैं, लेकिन देवगुरु शास्त्र को मानने वालों को भी हमें आयतन मानना चाहिए और उन्हें वैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बस सीधी बात ये है, जिसको जितना भी दे सके ये बात है। जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरादि कृतिन है न नमन करे हैं, ऊपर की लाइन नहीं पड़ी, कुगुरु कुदेव कुकश सेवक की नहीं प्रशंस उजरे हैं। आइए उसकी 4 तारीख को है रोज आकर, अच्छा ठीक, ये डॉक्टर बन गई तो चाहे MBBS है, उसका MS का एग्जाम देना है, 4 तारीख को MS का एग्जाम है उसका, और आराम से बैठी हूँ, आशीर्वाद से हो जाएगा सब। कुगुरु कुदेव कुग्रश सेवक की, अर्थात यहाँ पर कु और सु अपन ने लगा दिया तो हम एक जनरल मन में आता है, लोगों के नाम जेंस भी पूछ सकते हैं कि आप हमारे भगवान को कुदेव कुगुरु मानते, हमने सुना आपके शास्त्र में कुगुरु कुदेव को शास्त्र लिखा, हम उनको कहें कि नहीं हम तो अच्छे बुरे को अच्छा बुरा नहीं कहें क्या, जो बुरा है उसे बुरा कह रहे हैं, तो हम आपकी निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फैक्ट्स बता रहे हैं, हमने किसको सु माना है, हमने वीतरागी भगवान को ही सच्चा देव माना, इसके अलावा बाकी को हमने देव नहीं माना, ये हमारा है यथार्थ परक, हमारा दृष्टिकोण है, निंदा परक दृष्टिकोण नहीं है। जहां भी हमने कुदेव कुगुरु कहा हमारे मन में जरा भी क्रिटिसिज्म नहीं आनी चाहिए, बस वो है उनका उस तरह का स्वरूप है, इनको हमें देव नहीं मानना, इतना ही, इनको हमें गुरु नहीं मानना, ये हम, ये हमारे, जिसमें हिंसा का उपदेश दिया हो उसको अपना शास्त्र मान लेंगे, हम तो कुशास्त्री कहेंगे, जो हमको राग द्वेष का उपदेश देता हो उसको हम क्या गुरु मानेंगे, जबकि उस वाणी को हम उसको देव मानेंगे जो अभी राग द्वेष से ग्रसित है, नहीं। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, किसी से भी पूछ लीजिएगा आप जो मानते हैं उनसे पूछ लो, अच्छा तुम्हारे भगवान राग द्वेष करें तो, नहीं हमारे भगवान राग द्वेष नहीं करते, तो वेश तो राग द्वेष का बना के रखा उन्होंने, तो हम उस वेश को भी प्रणाम नहीं करेंगे। ये हमें उस समय बताना चाहिए कि हम, हमारा दृष्टिकोण निंदा परक नहीं है, हमारा दृष्टिकोण यथार्थ परक है, हमने जो बात जैसी है वैसी कही है, लेकिन जैन स्क्रिप्ट में कहीं कोई किसी भी धर्म की, किसी भी माने देव की, शास्त्र की, गुरु की निंदा नहीं की, सिर्फ बता दिया कि ये सच्चा ये झूठा बस, और इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा तीन तरह से होती है, मन से, वचन से और काय से। मन मनी मन होती प्रशंसा, वचन से होती है स्तुति, और शरीर से होता है अप्रिशिएशन, स्वीकार। कहते मन वचन काय तीनों से नहीं करना, कहीं बैठ करके, और वैसे उनके, अपन कई बार ऐसा कह देते हैं कई चीजों के बारे में, वैसे और जो भी हो, लेकिन ये चीज तो बहुत, उस समय जो है अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, उस क्वालिटी की कर रहे हैं या कि व्यक्ति की कर रहे हैं। ये अगर हमने किसी की अच्छी बात की प्रशंसा की तो ठीक है, उसके भीतर की बुराइयां भी बहुत हैं, हम उसकी, उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, क्रॉस
कुमारी तो करना दी, उनका भगवान है, जब उनका जन्म हुआ वितराग नहीं हुआ,
ठीक ठीक है,
हम उनकी क्यों पूजा करते, हमने उनको सुनवे पर्वत पर ले जाकर वो फिर उनका पूजा अर्चन के बाद क्यों ऐसा हो जन्म सीख किया।
तीर्थंकर की अगर अभी भी रागी अवस्था में तीर्थंकर मुकुट इत्यादि लगा के बैठे हों तो उनकी हम प्रतिमा का दर्शन नहीं करेंगे। जब तीर्थंकर चलते फिरते हैं, विषायक सम्यक दर्शन से युक्त हैं, तीर्थंकर प्रकृति से सहित हैं, अतिशय पुण्यवान हैं, और बिल्कुल मैंने इस जीवन से उनका मोक्ष होने ही वाला है, तब हम उसके लिए ऐसी पूज नहीं है जैसे भगवान पूज, रिस्पेक्ट देना एक अलग।
अपने जैसे
तीर्थंकर को बिल्कुल एक्सेप्शन मानना, थोड़ा सा तीर्थंकर को एकदम एक्सेप्शन मानना,
जैसे श्री रामचंद्र जी, ये भी हमारे जब उन्होंने
ठीक है ठीक है,
अपन ये कह सकते हैं कि जब वो वेशभूषा में थे हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं,
बिल्कुल दे रहे हैं,
जय जिनेंद्र बोल,
लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं एज ए किंग, नॉट एज ए गॉड, एज ए किंग हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे राजा हैं और प्रणाम आपके लिए, और आप आगे में जीवन में आप बलदेव भी हैं, आप मोक्ष जाने वाले हैं, आपको प्रणाम, लेकिन मोक्ष की तरह अनर्क प्राप्त है अर्घम निरपामती नहीं करेंगे।
महाराज जी शायद क्वेश्चन जो है जो मैं समझ पा रहा हूँ जो उनके दिल में है वो ये है कि जब जन्म होता है तीर्थंकर का तो इंद्र जो है
तीर्थंकर को भर एक तरफ रख दीजिए, बाकी सब की बात कर लीजिएगा, तीर्थंकर के बारे में मैं चुप हो जाऊंगा। तीर्थंकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, उसके बारे में कोई नियम लागू नहीं होता, बेबालक अवस्था में भी पूज्य है, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले ध्यान रखना, हमारा निर्वस्त्र होकर के मुक्ति हो सकती, ये कॉन्सेप्ट जो ये मानते हैं कि यही भगवान राम है, सीता जी के साथ बैठे, धनुष बाण लिए, सजे हुए, मुकुट लगाए, यही मोक्ष अवस्था है, नहीं ये राज्य अवस्था है, पर रिस्पेक्ट दे रहा हूं राज्य अवस्था को, लेकिन अब नहीं दूंगा क्योंकि आप उन्हें भगवान मानते, इसलिए आपके मंदिर में जाके मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है। मैं अपने घर में राजा राम की मूर्ति को जय जिनेंद कर सकता हूं, लेकिन आपके मंदिर में जाकर जय जिनेंद नहीं बोलूंगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ आएगा। हमारा कॉन्सेप्ट तो ठीक है क्योंकि ये राजा राम है, लेकिन आप इसके बाद कुछ जानते ही नहीं, आप तो इन्हीं को भगवान राम बना करके बैठे, आप भगवान बाहु उनकी हनुमान की टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति बानर की बना करके उनको हनुमान मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, वो तो परम पुरुष थे, वो तो कामदेव थे, सबसे सुंदर रूप था, और आपने क्या बेडोल बना दिया उनको। तो हमारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर नहीं है। इसलिए देखिए आप उस चीज को थोड़ा सा।
जी एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि भगवान महावीर जैसे, महावीर स्वामी का जैसे जन्म हुआ तो इन्होंने उनको भी वही सब पूजा अर्चना की होगी, जन्म पैदा जब हुए वो या जब घर में आए तो इतना सब चमत्कार होने के बाद भी क्या गौतम बुद्ध या जो दूसरे जो आप कहते हैं कि छह लोग ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे, तो उनको इतना समझ में नहीं आया कि जब देवलोक से इतनी पूजा अर्चना इनकी हो रही है तो भव्यात्मा तो यही है। फिर उन्होंने अपने दूसरे उनके जो विरुद्ध धर्म का प्रचार किया वो
प्रति तीर्थंकर, अपने को तीर्थंकर सिद्ध किया सबने कि वो नहीं है, मैं हूं तीर्थंकर।
पर वो तो दिख रहा है कि
दिखने से क्या होता। सो तो फिर ऋषभदेव भगवान का नाती था और उसने कहा कि ये सब गड़बड़ मामला है। 363 में तो उसने वहीं से चलाना शुरू किया। भगवान ऋषभदेव सामने बैठे के बावजूद सच्चे धर्म में भी हम श्रद्धा नहीं रखें तो ये हमारी अपनी अप्रोच है, इसमें क्या है, वहीं के वहीं रह करके। तो इसी तरह ये हुआ कि सब लोग थे और जान रहे हैं कि सच्चा है, लेकिन इसके बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज वर्तमान में भी अधिकांश ब्राह्मणों से पूछ लो, वो कहते कि हैं तो पहले भगवान ऋषभदेव ही आदि ब्रह्मा, लेकिन नहीं कह सकते। आज किसी श्वेतांबर से पूछ लो, कहते हैं तो ओरिजिनल दिगंबर ही, हम तो वैसे ही हैं, लेकिन हम मन से नहीं कह सकते। अब भीतर भीतर तो लग रहा है कि है तो सच्चा, लेकिन अब चूंकि लगे हैं उससे, अरे आप तो और दूर मत जाओ। आचार्य श्री ने जब कहा गोपचंद भारिन से कि भैया आप तो समझदार हो, ऐसे मोक्ष मार्ग का प्ररूपण ऐसा क्यों कर रहे हैं, खास हुकमचंद भारिन से, तो उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया था, धीरे धीरे ठीक होगा महाराज, हमारे 500,000 शिष्य हैं, उनका क्या होगा अगर हम बदल दें, जो उन चीज 50 से कहता रहे उसको हम बदल दें। सोचो आप, एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि चूंकि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल, कल के दिन अगर मैं बुद्ध हूं अगर और मैं ये कह दूं तो फिर मेरी क्या एग्जिस्टेंस, मैं तो फिर उनसे बहुत नीचे हो गया। तो गलत आदमी भी अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए गलत मार्ग का ही प्ररूपण करता चला जाता है,
ईगो।
तो छह प्रति तीर्थंकर, अपने आप को तीर्थंकर मानने वाले लोग, सब कुछ होने के, जबकि तीर्थंकर पैदा होते ही एक योजन तक खुशबू फैल जाती है कि ये तीर्थंकर है, कहीं से निकल जाए पता लग जाएगा तीर्थंकर है, आपकी स्पेशल खुशबू होती। आप क्या करेंगे, आप और तो सब छोड़ो, बाकी चीजें पूरे 12 योजन की अयोध्या में सुकाल हो जाता तीर्थंकर के पैदा होते ही सर, 6 ऋतुओं के फल आ जाते जहां वो चले जाए। कितनी सारी क्वालिटी है, देव हमेशा आगे पीछे, जिनके जिनके आने से पहले माता के लिए 6 महीने सेवा करने के लिए 56 देवियां आ रही, और तो छोड़ो आप अभी आए नहीं है, उसके बाद उसका वैभव बिल्कुल अलग है। लेकिन उस वैभव को देख करके भी ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत हैं भैया, जिनका कल्याण नहीं होना। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की वंदना करते हुए लिखा है कि ये भगवान कहते जरूर हैं लोग कि आप तीनों लोगों के द्वारा पूज्य हो, पर हमें नहीं लगता। हाँ अच्छा, आप बताओ मिथ्या दृष्टि आपको कहाँ पूजते हैं। देखो ऐसा कहते हो बहुत आराम से, जो है आप ही बताओ, अच्छा मिथ्या दृष्टि आपको कहाँ पूजते, फिर आप कैसे तीन लोग के नाम सब आपको कहां मानते हैं। तो इसी तरह ये है कि जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है वो तो अपने को ही बड़ा मानेगा, दूसरे को क्यों, जानते हुए भी ये यहां पर लेना। तो जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं, और हम स्पष्ट इसमें लिख दिया कि जिनेंद्र भगवान के लिंग को धारण करने वाले, वेश को धारण करने वाले मुनि, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी, और साक्षात जिनेंद्र भगवान, इनके अलावा और किसी को भी देवगुरु शास्त्र की हैसियत से, ये शब्द लगा लेना, इन सबको देवगुरु शास्त्र की हैसियत से प्रणाम नहीं करेंगे, बाकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट तो बात की चीज है।
प्रणाम में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, पैर छूना और हाथ जोड़कर प्रणाम, उन दोनों में कुछ अंतर है?
भावों का है ये,
नहीं पूरा खेल एक मिनट, जिससे हम अपने गार्जियन उनके पैर छूते हैं, फिर तो इस डिफिनेशन के हिसाब से हमको उनके भी पैर नहीं छूना चाहिए, इस डिफिनेशन से।
जो देव नहीं है और देव बना बैठा है, जो गुरु नहीं है और अपने को गुरु मनवाता है, जो शास्त्र नहीं है और वो अपने आप को शास्त्र कहता है। ये है यहां पर आंसर आपका। और कैसे एक्सप्लेन करें?
वो तो रेस्पेक्ट वाली बात है।
नहीं, वो मैं दोनों में
एक चीज तो पहले कर लीजिएगा, पूज्यता और आदर में क्या फर्क है? ठीक है, आदर देना बिल्कुल अलग बात है और पूज्य मानना अलग बात है। पूज्य तो पंच परमेश्वर जी हैं, बाकी कोई नहीं है। एलक जी, छोलक जी, माता जी भी नहीं है। छोड़ो आप झगड़ा, अगर आप हिंदी में पूछो हमसे तो आए समझ में आपके। पंच परमेश्वर जी पूज्य हैं। पूज्य पद कैसे मिलता है? पंच परमेश्वर जी को पूज्य पद मिला है, बाकी किसी को नहीं दिया। इसलिए नमो पंच नमस्कार, पांच ही नमस्कार के योग है पूज्यता। आदर, आदर तो हम जो जिस चीज में हम उसको वैसा आदर देंगे।
आदर देने के
तरीके अलग अलग हैं, सबको अलग अलग आदर देंगे। अब माता पिता है तो उनको वैसा आदर देंगे।
किताब आने के बाद क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एक अच्छी बात है कि आदर और पूज्यता, जो पूज्यता कैसे आती है, आदरणीय होना और पूज होना। तुम्हारे यहाँ परम पद में जो स्थित है वही पूज है, लेकिन हम बाकी सबके, इसलिए हमने लिखा ना कि इररिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी की भी, हम अनादर नहीं करेंगे, चाहे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, अनादर नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रशंसा नहीं करेंगे। प्रशंसा करके हम उनका हित कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, उनका भी। अपने गलत आदमी की प्रशंसा कर देने से उसकी गलतियों की प्रशंसा होती, उसका पोषण होता है, ये भी हमारा उसके पीछे वो है कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह उनको नमन नहीं करेंगे, अर्थात उनको पूज्य मान करके नहीं करेंगे। ये मैं कई बार समझा चुका इस चीज को, मैंने डिफाइन किया, आप नहीं होंगे उस समय, ये डिफाइन मैं हमेशा करता हूं कि देखो दामान जी, दामान साहब आए, हमने उनका टीका करा और उनको एक ठोक नारियल दे दिया, रुपए दे दिए और क्या कहा, प्रणाम, या कि मोक्ष फल प्राप्त है फलम। देखो कितना फर्क, हम आदर तो दे रहे हैं, नारियल भी दे रहे हैं, वही नारियल जो हम वहां चढ़ाते हैं वही आपको दे रहे हैं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, लेकिन हमारा वहां पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है कि ये दिया जाता है, श्रीफल है, आपको श्री की वृद्धि हो और उधर श्रीफल चढ़ा करके मुझे मोक्ष की वृद्धि हो, दोनों में फर्क। इसी तरह ये है कि माता पिता को माता पिता मान के प्रणाम कर रहे हैं, माता पिता को देव मान के थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं। बताइए आप, अपने जो स्कूल के गुरु जी हैं उनको गुरु जी मान करके, लेकिन कौन से वाले, स्कूल के? और मुनि महाराज जी को मोक्ष मार्ग वाले गुरु जी हैं, वो वाले स्कूल के गुरु जी हैं, दोनों में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? मान तो दोनों को रहे, लेकिन उनको मोक्ष मार्ग का गुरु नहीं मान लेंगे जो अपने गुरु जी बैठे हैं वहां पर स्कूल में। इतना फर्क है। अब मेरे ख्याल आदर में फर्क हो गया, श्रद्धा हमारी अलग, श्रद्धे अलग होता है, श्रद्धे अलग होता है, हाँ श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज है, सही है, पूज्यता कह लो या श्रद्धा कह लो, दोनों चीज, आदर अलग चीज। ठीक है, हम तो फड़ाते जाएंगे, क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि कई चीजें क्लियर होती हैं, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, जो लोग दोषों से, इन 25 दोषों से रहित होकर के और गुणों से युक्त हैं, हैं? यही 25 दोष नहीं हो तो गुण हो जाते हैं, यही तो गुण से सहित हैं, सुधि अर्थात बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि तो उन्हीं की कहलाएगी। देखो अकेले ज्ञानवान होने का नाम सुधि नहीं है, धी का मतलब होता बुद्धि, जिनकी बुद्धि अच्छी है अर्थात जैसी होना चाहिए वैसी है, और किसकी अच्छी है तो कैसे, जिसकी दृष्टि अच्छी है उसकी बुद्धि अच्छी है, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं है तो रखे रहो ज्ञान आप अपना कितने भी, यहां ज्ञान से मतलब नहीं, इसलिए सुधि लिखा उन्होंने, अर्थात समीचीन बुद्धि, समीचीन बुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान। तो क्या हुआ, दोष रहित गुण सहित सुधी जे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त जो हैं, सम्यक दर्श सजे हैं, सम्यक दर्शन और ज्ञान से जो युक्त हैं, इसको ऐसा लगा ना, देखो दोष रहित गुण सहित सम्यक दर्श सजे हैं सुधी जे, अर्थात
दोष से रहित गुणों से युक्त सम्यक दर्शन से जो युक्त हैं और सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, अब वो क्या करें? अब कहते चारित्र मोह बस लेस न संयम बेसुरनाथ जजे है। अब हमें महत्ता बताना है कि जो व्यक्ति सम्यक दर्शन और ज्ञान से युक्त है उसका भी बहुत मान्यता है, उसको भी पूज्यता आ गई है। कैसे आ गई? भले उसके पास चारित्र नहीं है, चारित्र मोह कर्म क्या करता है, हमारे चारित्र को नहीं होने देता। दर्शन मोह क्या करता है, हमारी श्रद्धा को ठीक ठीक नहीं होने देता। श्रद्धा तो होती लेकिन ठीक ठीक नहीं होती, सच्चे देव गुरुशास के अलावा और दूसरे पे हो जाती तो कहती वो ठीक श्रद्धा नहीं है। तो दर्शन मोह की वजह से हमारी श्रद्धा विकृत होती है, चारित्र मोह की वजह से हमारा चारित्र विकृत हो जाता। तो कहते मान लो चारित्र मोह का उदय है और कोई संयम नहीं ले पा रहा है लेकिन उसके सम्यक दर्शन और ज्ञान है तो उसके लिए भी सुरनाथ अर्थात इंद्रों के द्वारा भी वो पूज्य है। ये सम्यक दर्शन और ज्ञान की महिमा है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे अंदर परफेक्टनेस है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत बढ़िया आचरण भी है आपका, वही कह रहा कि कॉन्सेप्ट तो ये है आपका कि यही देव है यही गुरु है और आप उनकी पूजा करे चले जा रहे हैं, ये अपने को यहाँ पर समझने की चीज। मतलब हाँ देखो दोष रहित गुण सहित सम्यक दर्श सजे हैं, जो सम्यक दर्शन में जो दोष हैं उनको हटा करके उन्हीं गुणों से युक्त हैं और सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान तो होगा इसलिए लिखना पड़ा सुधी जे, अकेला सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन भी है और ज्ञान भी है। फिर अब सम्यक चारित्र होना चाहिए, तो कहते सम्यक चारित्र अभी नहीं है तो क्या करोगे आप? तो कहते कोई बात नहीं, पे सुरनाथ जरे है लेस न संयम, अभी सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो गया लेकिन चारित्र नहीं लिया है, तब भी जो है देवों के द्वारा पूज्य हैं। पूज्यता किसकी है? कहती सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पूज्यता है, इसलिए हमने उसको पूज्य मान लिया। और गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, ये श्रावक के लिए बात कर रहे हैं। अविरत सम्यक दृष्टि भी जो है इतना सम्यक दर्शन की महत्ता बता रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं अभी, मगर इसका ये मत समझना कि इतने में संतुष्ट हो जाओ। आचरण की बात भी करेंगे, चारित्र की बात भी करेंगे। अगर वो चारित्र ले नहीं पा रहा तो, और ले तो सका तो ले नहीं रहोगे काहु चारित्र से तो बिल्कुल पूज्य नहीं है वो, सम्यक दृष्टि भी नहीं है। समझ में ठीक है ना, उसके भीतर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों के मिलने पर ही मोक्ष का मार्ग होगा। अब मैं क्या करूं, सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो गया, चारित्र में ले नहीं पाता हूं, नियम लेता हूं तो टूट जाते हैं, मेरे से होता नहीं है, इतने मेरे पाप का उदय है, मैं क्या करूं? तो कहते भैया सम्यक दर्शन ज्ञान संभाले रहो,
उसकी भावना वैसी तो है,
और जिसकी भावना नहीं है उसको नहीं करेंगे, उसको पूजता नहीं, उसको तो सम्यक दर्शन ही नहीं है।
अच्छा, जिसको भावना नहीं है उसको सम्यक दर्शन
नहीं, उसमें लिखा है सबसे पहले चारित्र की भावना होनी चाहिए, मैं व्रत नियम संयम अंगीकार कर सकूं, ये भावना नहीं है तो उसका सम्यक दर्शन का कोई हिसाब नहीं है। जो अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान से मोक्ष मान लेता है उसका भी कोई वो नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलने पर ही मोक्ष का मार्ग बनेगा।
इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो देवों से स्तुति फिर भी है,
पर स्तुति करवाई सम्यक दर्शन की, उसकी नहीं करवाई।
उसकी अपेक्षा से होगा,
उसकी अपेक्षा से, क्योंकि अब इसका संसार जो है थोड़ा रह गया, इसने सम्यक दर्शन पा लिया है तो अब भटकेगा नहीं संसार में, इस अपेक्षा से उसको पूजा पूर्ण। बस बाहर से देखेंगे, बाहर से देख लेंगे कि भाई सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा है, और मैंने जहाँ श्रद्धा है वहाँ ज्ञान भी है, बस इतना ही देख सकते हैं। मन भीतर से तो टटोल नहीं सकते किसका क्या है, चारित्र के प्रति अनुराग तो देखेगा उसका, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करेगा वो। लेकिन जैसे सम्यक दृष्टि है तो रात्रि भोजन नहीं करता, लेकिन कोई कहे कि नियम ले लो, नियम नहीं ले तो करो का रात्रि नहीं, रात में भोजन नहीं करते तो नियम नहीं है। अच्छा ठीक, सात व्यसन करते हो? नहीं करते तो त्याग ले लो, त्याग नहीं लेते तो करना है क्या? करना भी नहीं, नहीं वो उसके कॉन्सेप्ट में ऐसी चीज नहीं है, उसकी भीतर भीतर भावना नहीं है लेने की। उसके सीजे ही तो कह रहे कि चारित्र मोहिनी का उदय है, इतना तीव्र कर्म का उदय है कि चाहते हुए भी नहीं ले सकते। भीतर भावना है कि ले लेते, सब जने ले रहे, हम भी ले लेते, तो होता नहीं ले, वापस आ जाए, ऐसा लगा ना उसको। अंतर मुहूर्त में छूट सकता, सुबह यहां तो और कहो दोपहर तक खत्म, दोपहर तक बहुत हो गया, संजय तो और तो छोड़ो, कहते बारीक रूप से हैं कि जब आहार के लिए निकले थे तो सम्यक दृष्टि थे, बैठे थे जब पूजा हो गई तब तक थे, भोजन लेते समय मिथ्या दृष्टि हो गई, अब क्या करो, अब क्या करो, कुछ नहीं, आहार देव चुपचाप, नहीं पता आपको कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। और अगले क्षण जागृति फिर से आ गई, अरे क्या करता हूं, फिर से सम्यक दर्शन, शयोप सम सम्यक दर्शन है, बूढ़े की लाठी की तरह कांपता रहता है, जरा में विचलित हो जाता है, कोई नसन्न की चार बातें कह देंगे, का धरोही में धर्म में, हाँ कहा है कुछ नहीं, बस हो गया खत्म। फिर उसके बाद फिर समझ आई, अरे नहीं नहीं सच्चा है, ऐसा है, डमाडोल हो जाता बहुत जल्दी, आनंद हो जाता, आज ऐसा है ही नहीं, सम्यक दर्शन छह उपसम है, बूढ़े की लाठी के समान हमेशा हिलता डुलता रहता, डमाडोल जरा वैसे नहीं चीज, फिर संभलता, फिर खड़े हो जाता, फिर चलने लगता, ऐसा है। पर एक बार हो जावे, एक बार हो जावे तो तय हो गया कि अब संसार से पार हो ही जाएंगे, ये उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसकी प्रशंसा में क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान से तो युक्त है, चारित लेना चाहता है लेकिन चारित नहीं ले पा रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं, कि गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, घर में रहता हूं, गेही गेही अर्थात गृहस्थ है, पे ग्रह में न रचे, लेकिन घर में रस्ता बसता नहीं है। अब देख लो जितनी सम्यक दृष्टि अपने को मानते हैं, घर में रचपच रहे कि नहीं, अगर नहीं रचपच रहे तो पूज हैं, तो सुरनाथ जजी हैं, नहीं तो नहीं, इतना स्पष्ट हो गया। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यो, कैसे उदाहरण दो, जलते भिन्न कमल, इतनी भिन्नता होनी चाहिए, घर में रह करके भी घर से अलिप्त है, उसको सुख दुख नहीं व्यापता, राग द्वेष में बहुत मंदता आ गई, परिणामों में प्रशम आ गया, ये उसकी क्वालिटी अपने आप दिख जाती है। नगर नारी को प्यार यथा कांदे में है अमल है, और भी उदाहरण दे दिए, तीन उदाहरण दे दिए, जैसे जल से भिन्न कमल है, और इसी तरह नगर नारी मतलब नगर वधु जिसको अपन अपनी भाषा में वेश्या बोलते हैं, उसका प्यार कैसा है, पैसे का है, उसका आपसे थोड़ी है, आप पैसा फेंक देते हो, सो आपसे प्यार है उतनी देर का, ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। अब क्यों दिया उदाहरण ऐसा, भगवान जाने। और कांदे में हेम, एक एक उदाहरण से काम चल सकता तो वैसे लेकिन दिया उन्होंने, क्योंकि किसी किसी को इसी भाषा में समझ में आता, अपन को नहीं आता, किसी को इसी भाषा में समझ में आ जाता, हो सकता उसको जो है इसी से बोध हो जाए, अरे जी संसार का प्यार ऐसा है, पैसे का है, अपने स्वार्थ का है, और कांदे में हेम वल है, कांदे में हेम वल है अर्थात सोनो गिर जावे कीचड़ में तो भी उसमें जंग अंग नहीं लगती, लोहे में तो जंग लग जाएगी, सोना ज्यों को त्यों रहेगा। हेम का मतलब है यहां पर स्वर्ण, अमल मतलब निर्मल, कचरे में पड़ जाने पर भी जैसे सोना अपना अपनी मलिनता मलिन नहीं होता, अपनी निर्मलता को नहीं खोता, ऐसे जो सम्यक दृष्टि है वो संसार में रचता बसता नहीं, ये कहने का उनका उद्देश्य। अच्छा दो और रह गए, पूरा कर रहे क्या, प्रथम नरक विनश। अब ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की और क्या महिमा है, तो सम्यक दर्शन की महिमा है प्रथम नरक विन षडभू ज्योतिष बान भवन षण नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। अगर सम्यक दृष्टि मरे तो कहां कहां नहीं जाएगा मर करके, ये बता रहे, प्रशंसा कर रहे, सम्यक दर्शन की प्रशंसा कर रहे भैया, इसमें कोई की निंदा नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो इसमें आ जाए कि ये तो निंदा कर रहे हैं, प्रशंसा है सिर्फ सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि पहली पृथ्वी से नीचे नहीं जाएगा अगर सम्यक दर्शन के साथ है, तो सम्यक दर्शन छूट जाए तो चलो जाए, देखना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेना। सम्यक दर्शन लेकर के कोई भी पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता, और सम्यक दृष्टि को नरक तो जाने ही नहीं है वैसे, लेकिन पहले नरक आयु बांध ली फिर सम्यक दर्शन करा। सैनिक ने पहले 7 नरक की आयु बांध ली, फिर बाद में शायक सम्यक दर्शन हो गया। अब शायक सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन लेके जाना है, तो लेके जाना तो नरक में पहले से नीचे नहीं भेज सकत, तो उनका इंप्रूवमेंट कर दिया, 7 में से पहले का दे दिया। कहां 33 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु बनी थी, 33 की कम होकर के नहीं 84,000, 84 इसलिए क्योंकि 21,000 के दो 42 दूनी 84 पहले तीर्थंकर बने उनको। सो पंचम काल की शुरुआत में गए थे, सो पंचम काल के 21 और छठे काल के 21 और फिर छठे के 21 और फिर पंचम के 21, सो कितने हो गए सब 84, और फिर सीधे जैसे ही चौथा काल आएगा सो सैनिक खुश तीर्थंकर होना, ऐसा हिसाब बना दिया उनको, 84,000 वर्ष की आयु कर दी कितने उसमें से इस तरह। तो ये पहले नरक से हैं क्या 84,000। तो इसका अर्थ यह है कि कोई अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो एक तो नरक आयु बांधेगा नहीं, अगर पहले नरक आयु बंध गई हो फिर सम्यक दर्शन किया हो तो सम्यक दर्शन लेकर के पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, और अगर नरक आयु बंध गई बाद में सम्यक दर्शन छह उपसम हो गया अगर मान लो, तो फिर दूसरे तीसरे नरक में जाएगा भी तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा और वहां जाकर के फिर से प्राप्त कर ले वे, ये बात अलग है, पर सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाएगा पहले नरक से नीचे, ये लगाना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि शायक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि शायक सम्यक दर्शन कभी नहीं छूटता, उपसम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में छूट ही जाता नियम से, शय उपसम सम्यक दर्शन जो है छूटे भी होने भी छूटे 33 सागर तक की उसकी वो है 66 सागर तक चल सकता है, उसमें मत पड़ो कठिन हो जाएगा वो, आप तो ये
समझ जैसे अगर दूसरे तीसरे नरक में गया फिर
कर लिया तो कर
इंप्रूवमेंट होगा,
अब वहां से निकलने वाले का अलग है, अभी तो जाने वाले का कह रहे हैं है ना, कि वहां सम्यक दर्शन के साथ जाएगा तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, अगर दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है तो सम्यक दर्शन छोड़ के जा रहा है, छूट जाएगा फिर वहां चले जाएगा, वहां जाकर के फिर सम्यक दृष्टि हो गया और फिर जो है वहां से निकलेगा तब भी लेके नहीं निकल सकते, हाँ फिर छूट जाएगा, तो फिर वहां से आओगे तो कहां जाना पड़ेगा मनुष्य तिरंज में, इसलिए मनुष्य तिरंज में भी आए हैं तो पहले नरक से कोई आएगा तो सम्यक दर्शन लेके आ सकता है, इसलिए तीर्थंकर भी पहले नरक से आए हैं तो सम्यक दर्शन लेके आए हैं, तो उनकी बर्थ डे मनाते हैं वो, बाकी कोई की नहीं मनाते, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ आओगे जाओगे कहां से, नरक से आए होगे तो मिथ्यात्व के साथ आओगे, काय की बर्थ डे आपकी, मिथ्या दृष्टि की थोड़ी मनाना, और उनकी मनाते हैं जन्मदिन सम्यक दर्शन लेके आए, वहां से लेके भी नहीं आ सकते ये खैर मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, बहुत तो उसका कारण क्रॉस भी इतना ही समझे, कोई कहे तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएंगे सम्यक दर्शन के साथ, और षट भू लिख दिया मतलब 6 पृथ्वी 7 है टोटल, 7 नरक है, 7 पृथ्वी कहलाती, नरक तो बहुत है 7 पृथ्वी है, तो उसमें से ऊपर में जाएगा बाकी नहीं, बान भवन अर्थात व्यंतर और भवनवासी देव में नहीं होगा, और शंड अर्थात नहीं ज्योतिष पहले भूल गए, ज्योतिष ज्योतिष मतलब ज्योति देवों में नहीं होगा, बाण मतलब व्यंतर देवों में नहीं होगा, भवन का अर्थ भवनवासी में नहीं, तीनों देवों में नहीं होगा, तो किस में बचा वैमानिक होगा, सम्यक दृष्टि वैमानिक स्वर्गों में जाएगा इनमें नहीं जाएगा, और शंड अर्थात नपुंसक नहीं होगा, नारी अर्थात स्त्री में उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दर्शन के साथ में, बाद में सम्यक दर्शन कर ले तो हो जाएगा सम्यक दर्शन, स्थावर में नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि, विकलत्रय 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं जाएगा, और पशु में नहीं जाएगा, इन सब में सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाएगा, पर इन सब में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान रखना, इनमें साथ में लेकर के नहीं जाएगा पर इनमें पहुंचने के बाद कोई चाहे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इतना बल देना, तो इसका मतलब यह हुआ कि सम्यक दर्शन की महिमा है ये, किसी की इसमें क्रिटिसाइज नहीं है कि नहीं, तो आप कहो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं है? तीन लोग क्योंकि तीर्थंकर की मां सम्यक दृष्टि होती, सम्यक दृष्टि कोई तीर्थंकर उत्पन्न होंगे, दोनों माता पिता सम्यक दृष्टि होंगे तब तीर्थंकर उत्पन्न होंगे, बहुत तीन लोक तिहु काल माही नहीं सम दर्शन सम सुखकारी, इस सम्यक दर्शन के समान तो तीनों लोकों और तीनों कालों में कोई भी सुखकारी नहीं है और सकल धर्म को मूल यही। और अगर रूट मेन है, मूल मतलब उसकी जड़ अगर है कोई तो क्या है, सम्यक दर्शन ही है। इस बिन करनी दुखदा दुखकारी, ई के बिना चाहे जो करत रहो वो सब संसार का दुख का कारण, मतलब संसार का कारण है। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि अपन मिथ्या दर्शन के साथ भगवान की पूजा कर रहे सब उनको दुख मिलने, नहीं संसार नहीं कटेगा आपका क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं है और आप पूजा तो अच्छी ठाठवाड़ से कर रहे पर आपकी दृष्टि में नहीं है, आपकी दृष्टि गड़बड़ है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा पर संसार ही बढ़ेगा। यहाँ दुखकारी से अर्थात संसार को बढ़ाने वाला ऐसा लेना भी, देखो अर्थ निकालना भी कठिन है, इसलिए लिखा हुआ है उसमें कि जिसने पहले पढ़ा हुआ हो या कि उसी से पढ़ना, अपने आप से पढ़ेंगे या अधकचरा वाले से करेंगे तो वो अर्थ नहीं निकाल पाएगा ठीक ठीक वाला, तो गड़बड़ यही तो हुई इन्हीं इस मेन स्क्रिप्ट में ही, तो कितनी गड़बड़ हुई इनकी व्याख्याएं बाद बाद को की, अब व्यक्ति ने तो हिंदी पढ़ ली व्याख्या पढ़ ली और अपने आगे बढ़ गया, उसकी भी गलती नहीं है, वो क्या करेगा, गलती यही है कि उसने ठीक ठीक नहीं पढ़ा, ये तो है गलती, पढ़ना ठीक चाहिए। देखो हिंदी में सीधा लिख दिया, ये क्रियाएं दुख देने वाली हैं, दुख देने वाली हैं मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो और शुभ कार्य कर रहा है तो उसको दुख होगा क्या, नहीं इसका अर्थ ये थोड़ी है उसको दुख नहीं, उसको संसार मिलेगा, संसार से पार नहीं हो पाएगा तो संसार में तो दुख लगा ही हुआ है, यहाँ ये आशय लेना। मोक्ष महल की प्रथम शीरी, याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्त्वान लहें सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इतनी बात इसमें कह दी कि मोक्ष महल में तीन सीढ़ियां हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, और दूसरी तीसरी पे पांव न रखो, पहले पहली पे चढ़ो उसके बिना प्रथम सीढ़ी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और इसके बिना ज्ञान और आचरण की सीढ़ी पर आप चढ़ ही नहीं सकते। अगर इसके बिना ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती, ऐसा कह लीजिए, ज्ञान और चारित्र तो रह सकता है, एक मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान रह सकता है, मिथ्या दृष्टि भी व्रत नियम संयम का पालन कर सकता, मनो उसका वो ज्ञान और चारित्र समीचीन नहीं है, बस इतने सही नहीं है। सम्यक्त्वान लहे, वो समीचीन पने को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दर्शन धारो भव्य पवित्रा, इसलिए सम्यक दर्शन जो पवित्र सम्यक दर्शन है उसको तुम धारण करो, दौल समझ सुन चेत सही। देखो कितनी बातें कह दी, दौल अपने आप को संबोधन कर रहे हैं दौलत राम जी, अपन को अपने को संबोधन करना चाहिए कि समझो ये बात को, सुनो, समझ भी ले सुन भी ले चेतो क्या है उसमें, ऐसा नहीं क्या अकेले समझ क्यों सुन क्यों बाहर चले गए, नहीं समझ पहले समझो, ठीक 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 समझोगे तो ठीक समझ के साथ सुनोगे तो ठीक सुनोगे, इसलिए सुन शब्द बाद में, पहले कहते थे सुनो फिर समझो, ये तो नहीं, ठीक ठीक समझो इस बात को फिर ठीक ठीक सुनो, और चेतो सयाने, बुद्धिमत्ता इसी में, सयाने का अर्थ है यहाँ पर, अपन सामान्य रूप से ये कहते कि ज्यादा सयाने ने बनो मतलब चतुराई में करो लेकिन यहाँ पर अच्छे शब्द में है सयाने, मतलब आप तो होशियार हो और फिर भी आप नहीं समझ रहे, ऐसा कहना, काल व्यथा मत हो, समय जो है व्यर्थ मत गवाओ, वेस्ट मत करो, क्योंकि ये नरभव फिर मिलना मुश्किल कठिन है, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिनाई बहुत मेहनत से पाया, जहां भी ये मुझे ये लगता है कि जहां भी उन्होंने लिखा कि बहुत कठिन है तो हमें वो ये कहवाना चाह रहे हैं कि मिल तो गाओ है, बहुत कठिनाई से मिला होगा, भूल गए तो हैं, ये हमें याद दिलाना चाह रहे हैं कि बहुत कठिनाई, पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा जिसने पाया है, अब क्या कर रहे हो, कम से कम मूलधन तो मत गवाओ, फिर से मिल सके इतना उपाय तो करो। टूडरबंद जी ने उसमें यही लिखा कि मैं ये नहीं कहता कि पुण्य ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि इतना पुण्य तो करो कम से कम कि फिर से जो है सच्चे देव गुरु शास्त्र की सानिध्य वाली चीज, बस इतना करो, और क्या करना भोग विलास के लिए, पुण्य की आवश्यकता नहीं भोग विलास के लिए, कर्मों की निद्रा के लिए मुझे पुनः ये शरीर मिले, वज्र निष्प्रषभ नाराज सहन मिले मुझे, ऐसी आकांक्षा करते तो ये आकांक्षा बुरी नहीं है, अच्छी, क्योंकि धर्म ध्यान और मुझे वज्र का शरीर मिले ताकि भोग भोग सकूं अच्छे से, अरे तो कहते तुम्हारा संसार इतना ही तो भाई कॉन्सेप्ट का ही तो सारा खेल है। बताइए आप, एक व्यक्ति कई चीजों का त्यागी है काय के लिए कि अस्वस्थ न हो जाए, और एक व्यक्ति कहते नहीं इसलिए त्याग करता हूं क्योंकि जितना त्याग करूंगा उतना मेरे आत्मा